मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफआईएस के आज 4 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित तौर पर मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। तो सूचनाएं ये हैं कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वे कल आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही योजना के आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आर्टिकल्स आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने को मिलेंगे। और इसके साथ ही एक वीकली क्वेश्चन आप सबको दिया जाता है मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर, ताकि अगर आपकी थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी हो तो आप मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों आइए इससे पहले कि हम मैं मुख्य विषय पर आऊं, मुख्य विषय के तहत मैं आपसे जनता ही होती है वास्तविक विपक्ष इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले कुछ जो दूसरी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बकायदे एक जनहित याचिका दायर की गई है और वह याचिका इससे संबंधित है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोक अध्यादेश जारी किया है, जिसे हम सब अभी लव जिहाद के नाम से अखबारों में पढ़ रहे हैं और ये शब्द हम लोगों की जुबान पर भी आ गया है। तो अध्यादेश जारी किया गया था, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अभी इसका अपडेट केवल यह है कि इसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई दो तीन बातें और भी हैं। कभी कभी तो ये लगने लगता है कि अब जो नियम कानून बनाने का काम है हमारी विधानसभाएं और संसद न करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेंगे, और साथ ही साथ कभी कभी तो सीधे सीधे ये भी लगता है कि प्रशासन का काम भी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेंगे, शायद सब कुछ हम न्यायपालिका को सौंपते चले जा रहे हैं। ये एक गंभीर स्थिति है, खासकर एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन में, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो मान करके चलिए कि ठीक है ये न्यायिक सक्रियता तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत जबरदस्त विफलता की ओर भी संकेत करती है। अब आप देखिए कि दूसरे क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। मास्क, कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि मास्क लगाना सरकार कह रही है मास्क लगाइए, उसके ऊपर नियम भी कानून भी बना दिए गए हैं कि मास्क नहीं लगाने वाले को इतना जुर्माना किया जाएगा, प्रशासन सक्रिय भी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब आप देखिए कि वो कानून की भाषा में कैसे बात कर रही है कि नहीं आपको मास्क लगाना चाहिए, और मास्क न लगाने का मतलब है कि आप दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट से जुड़ गया। ठीक है आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी की चिंता तो आपको होनी चाहिए, और जीवन का अधिकार हम सबको है, मौलिक अधिकार है। तो एक तथ्य है कि आप देखिए कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है आप कह लीजिए, और उसने सरकार से कहा है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी, कि जितने भी पुलिस स्टेशन से पुलिस के थाने हैं, ये तो राज्यों में ही होते हैं, उन पुलिस स्टेशन पे सीसीटीवी लगाए जाएं, जिसे आप वीडियोग्राफी कह लीजिए, बकायदे वहां कैमरे लगाए जाएं ताकि वहां की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो सके साक्ष्य के तौर पर। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने आप समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर थानों पर आरोप लगाया जाता है ना, पुलिस पर आरोप लगाया जाता है कि वो लोगों से जबरदस्ती करती है, उन पर अत्याचार करती है, उनके साथ मारपीट करती है, इस तरह की घटनाएं आपको अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। तो कम से कम वीडियोग्राफी होती रहेगी तो सच्चाई मालूम होगा कि हाँ सच में क्या स्थिति है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कहा गया है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो जांच पड़ताल की काम करती है, जैसे सीबीआई जांच पड़ताल का काम करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये सब इस तरह के काम करती हैं, कि वहां की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि अगर हम इन संस्थाओं में सुधार की बात करें, जैसे पुलिस व्यवस्था में सुधार के बारे में खूब आपको मैं आर्टिकल्स प्रोवाइड करता हूं, और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, और आप सिविल सर्वेंट के रूप में हो सकता है कि आप इंडियन पुलिस सर्विस में आ जाएं, आईपीएस में आ जाएं, तो अब ये जो सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही जा रही है ये कौन कह रही है, ये कानून पारित नहीं किया है हमारे विधानसभाओं ने, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका मतलब है कि जो सरकार है क्या इसके बारे में खुद भी नहीं सोच सकती थी। मैं आपको एक एनालिटिकल पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इतना ही नहीं बल्कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे यहां जो जिले हैं, प्रत्येक जिले में ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाया जाए, जो न्यायालय हैं, मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की जाए। इसका भी पर्पज वही है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके, लोगों के ऊपर अत्याचार न हो, उनके साथ जबरदस्ती न हो। तो अब आप देखें कि ये सारे जो आदेश दे रहा है वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और एक दिन में कितने सारे आदेश हैं, एक ही दिन के नहीं हैं, दो तीन दिन के दौर में दिए गए हैं, लेकिन आप पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर का संबंध हमारे प्रशासनिक सुधार से है। ह्यूमन राइट कमीशन आपके सिलेबस में है तो उसमें आपको एक तथ्य मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। पुलिस सुधार तो है ही आपके सिलेबस में, प्रशासन के सुधार के बारे में बात होती है जिसका पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसमें आपका अपडेट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों ये सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का एक चैलेंज होता है कि आप कैसे अपने आप को अपडेट रख पाते हैं, और साथ ही साथ जो तथ्य आपके दिमाग में है कैसे आवश्यकता पड़ने पर बहुत अच्छे तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए बात बनेगी नहीं। फिर तो आप जानते रहिए, अगर आपने अपनी जानती हुई बातों को आप अगर एग्जामिनर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जानना न जानना बराबर है, उनको इससे क्या मतलब है। तो दोस्तों एक और खबर जो आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी आज के, कि जो MDH के मालिक थे, MDH, M फॉर महाशय, डी फॉर दी, एच फॉर हट्टी, महाशय दी हट्टी, MDH। देखिए हम लोग कब से MDH के बारे में सुनते आ रहे हैं, MDH मसाले, कितना एड इस पर आता था जिसमें कि एक बूढ़े से व्यक्ति हैं, सिर पर पगड़ी बांधे हुए, कुर्ता पहने हुए और बकायदे हाथ चला करके और अपने मसालों का विज्ञापन करते थे, जिनका पूरा नाम है धर्मपाल गुलाटी, उसके आगे वो महाशय लगाते, महाशय धर्मपाल गुलाटी। उनका कल निधन हो गया, वो 97 इयर्स के थे। तो दोस्तों मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। सच में यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़े उत्साह ऊर्जा का कारण बन सकता है। 97 इयर्स की एज और अंतिम समय तक पूरी तरह से सक्रिय उनकी जो जीवन पद्धति रही है, जो उनके कार्य करने की प्रणाली रही है, उनकी जो ऊर्जा रही है, उनकी जो उदारता रही है, आज अखबारों में काफी कुछ उसके बारे में लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर उनके बारे में पढ़ें। एक बड़ी खूबसूरत बात वो कहा करते थे, बहुत लोग इस बात की आलोचना करते थे कि यार ये MDH मसाले का विज्ञापन खुद करते हैं, या किसी फिल्म वाले को ले तो बात बने तो विज्ञापन कुछ फैले भी, तो उसमें वो कहते थे कि नहीं, मेरे मसाले के बारे में जितना मैं जानता हूं उतना कोई दूसरा नहीं जानता, तो अपने मसाले के बारे में मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरा कौन बताएगा। बहुत सही बात कह रहे थे। अब तार्किक रूप से आप सोच करके देखिए कि कितनी सही बात धर्मपाल गुलाटी जी कह रहे थे, है ना। पाकिस्तान में थे जब देश का विभाजन हुआ, तो वे भारत आए और यहां आने के बाद बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की। तो दोस्तों ये थे हमारे धर्मपाल गुलाटी जी, MDH मसाले के मालिक। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के लिए दोस्तों बहुत थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको केवल कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आज दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है, वो आर्टिकल मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे रहा हूं, राजदीप सरदेसाई जी का है, जो जिन्हें मैं एक तरह से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट जो होते हैं, जैसे शेखर गुप्ता जी हैं, राजदीप सरदेसाई जी हैं, ये इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, उनका आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं और वहीं से मैंने ये टाइटल लिया है। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिए, जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में तो नहीं है लेकिन विपक्ष में बैठी हुई है, और एक शक्तिशाली विपक्ष है जो सत्ताधारी जो दल है जिस पर वो नियंत्रण रखने का काम करती है, प्रश्न पूछती है, उसके जो इस तरह के नियम कानून बनाने की जो स्थितियां हैं उनको रोकने के लिए उसे मजबूर करती है, अपने निर्णयों को बदलने के लिए मजबूर करती है, जो जनता के बीच में जाकर के आंदोलन का नेतृत्व करती है, वो है विपक्ष। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग सात साल से विपक्ष की बहुत ज्यादा कोई भूमिका नहीं रह गई है, क्योंकि विपक्ष में कोई इतनी पार्टी शक्तिशाली रह ही नहीं गई है, उनके पास सदस्यों की संख्या इतनी कम है कि वो एक प्रकार से बहुत कमजोर हो गए हैं। अब ऐसे में क्या हो, क्योंकि लोकतंत्र की जो रक्षा होती है या यूं कह लीजिए कि लोकतंत्र की जो सही आत्मा है उसमें विपक्ष भी शामिल है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर तो ये आप कह लीजिए बहुसंख्य की तानाशाही हो सकती है, और कुछ लोग इस रूप में व्याख्या भी करते हैं कि वास्तव में जो लोकतंत्र है वो बहुसंख्य की डिक्टेटरशिप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भी कानून बना ले, क्योंकि वो तभी तक सत्ता में है जब तक कि उसके पास बहुमत है, और बहुमत है तो वो कुछ भी बना ले। अब आप देखिए कि अभी जो किसानों पर जो तीन कानून बने हैं कृषि व्यवस्था पर, और जिसको लेकर के अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं जो लगातार फैलता चला जा रहा है, जब ये तीनों बिल पारित हुए तो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि इन पर न तो उतनी ज्यादा बहस हुई है, किसान भी अभी आरोप लगा रहे हैं कि किसान संगठनों से इस बिल के बारे में बात ही नहीं किया गया। जो कमजोर विपक्ष के लोग थे उन्होंने ये लगातार मांग करते रहे कि भाई इस बिल को कमेटी को सौंप दो और थोड़ी सी इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। आपके बकायदे संसद में बहस के लिए कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया गया, और किसान बिल, कृषि बिल जो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यह आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो बिल पारित हो गया। उसकी जो स्थितियां हो रही हैं वो अभी आप देख रहे हैं, इतने सारे किसान संगठन अब मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो यहां जो आर्टिकल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें यह बताया गया है कि ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, जो पीपल है, हम भारत के लोग, ये सही मायने में अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो आंदोलन हो रहा है इसके पीछे सीधे सीधे कोई राजनीतिक दल नहीं है, नहीं तो इस तरह के आंदोलन करने में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनके पास एक संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, गांव गांव में, शहर शहर में फैले हुए हैं, वो लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, उनको संगठित करते हैं, फिर उनकी बकायदे व्यवस्थाएं होती हैं। अभी तक कम से कम इस तरह का कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आंदोलन चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि किसान आंदोलन ने बताया असली विपक्ष कहां है। यह आर्टिकल है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: एकता सिंह सहरसा बिहार से, मोहम्मद तैयब, माली मनीषा, हरिराम सैनी, जिज्ञासा मीना और निधि मीना। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सब को मैं अपना अभिवादन प्रेषित करना चाहूँगा। स्वीकार करें, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।